अब जैसे ही सम्राट ने ये इंस्ट्रक्शन दिया तो ये सुनकर रॉकी ने मन ही मन में राहत की सांस ली थी, क्योंकि कम से कम उसकी जान तो बच गई थी। हालांकि उसका शरीर दर्द से पूरी तरह से टूटा जा रहा था, लेकिन वो अब और देर नहीं करना चाहता था, और इसीलिए देर ना करते हुए उसने राजवीर के स्वागत की तैयारी करनी शुरू कर दी थी। अब आगे इस बार सम्राट की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। रॉकी को जिम्मेदारी सौंपने के बाद अगले ही पल वो फटाफट से अपने शानदार बाथरूम में आया और जाकर उसने फैंटास्टिक शावर लेना शुरू कर दिया था। इस वक्त उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कुराहट थी, और कहीं ना कहीं राजवीर का ग्रैंड वेलकम करके वो स्पेशली उसे इस बात का एहसास करना चाहता था कि शुरू से ही राजवीर ने अरमान को सम्राट से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था, क्योंकि राजवीर का सबसे ज़्यादा ध्यान सम्राट ने रखा है और उसकी जान उसने बचाई है। तो इसीलिए आज सम्राट राजवीर को इस बात का पूरी तरह से रियलाइज़ करवाना चाहता था कि राजवीर को जिस अरमान पर शुरू से ही इतना ज्यादा यकीन और घमंड था कि उसके जितना इंटेलिजेंट कोई हो ही नहीं सकता है, वो धोखेबाज निकला। लेकिन कहीं ना कहीं सम्राट आज पूरी तरह से तड़प रहा था राजवीर के मुंह से अपने लिए तारीफ सुनने के लिए, और जल्द ही वो फटाफट से अपना तौलिया पहनकर वॉशरूम से बाहर निकला। जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर निकला, उसने अपने लंबे चौड़े लोहे जैसे शरीर को आईने में देखा, और उसके बाद बेड पर पड़े हुए अपने महंगे सूट को देखा, और एक रहस्यमयी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गई। और जैसे ही वो अपना सूट उठाने के लिए आगे बढ़ा, अचानक ही उसे अपने कमरे में यहाँ वहाँ सिगार का धुआं उड़ता हुआ नजर आने लगा। अब सम्राट एक पल के लिए ठिठक गया, और जैसे ही धुएं में उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया तो वैसे ही सम्राट की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गई थीं, क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि द ग्रेट डेविल अरमान सिंघानिया बैठा हुआ था। अरमान सिंघानिया को अपने सामने देखकर अचानक ही सम्राट के चेहरे पर एक कड़वी सी मुस्कुराहट उभर आई, और वो सिर्फ तौलिया लपेटे हुए ही बेपरवाह अंदाज में अरमान के सामने जाकर अगले ही पल खड़ा हो गया था। तब अरमान ने सम्राट को ऊपर से लेकर नीचे तक ठंडी नजरों से देखा और फिर बड़े ही कोल्ड वॉइस में बोला, क्या बात है ठाकुर, तू तो सीधा तौलिये में आ गया। जैसे अरमान ने थोड़ा सा मजाक उड़ाते हुए पूछा तो वैसे ही सम्राट के एक्सप्रेशन पूरी तरह से बिगड़ चुके थे। सम्राट ने आईब्रो तरेरी और अरमान की ओर बेमन से देखा। सम्राट की आंखों की चमक हल्की सी बदल गई थी। कहीं न कहीं सम्राट अरमान को तिरछी नजर से घूरते हुए सोचा जा रहा था, अरमान को उसके ठिकाने के बारे में कैसे पता चला? बड़े बड़े गुंडे, मवाली, पुलिस, कोई भी शख्स आज तक ब्लैक डेविल के ठिकाने का पता नहीं लगा पाया था, लेकिन अरमान जिस तरह से धड़ल्ले से बेपरवाह अंदाज में सम्राट के सामने बैठा हुआ था, ये देखकर तो सम्राट की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। फिलहाल अरमान की ओर बेपरवाही से देखकर वो बिल्कुल आराम से बोला, अगर तू यहाँ तक आया है तो मैं समझ चुका हूँ सूर्यवंशी कि जरूर तूने मेरे सभी आदमियों को ऊपर भेज दिया होगा, लेकिन मानना पड़ेगा तो काबिले तारीफ है, तूने इतनी जल्दी मेरे अड्डे के बारे में पता भी लगवा लिया। कैसे किया तूने ये सूर्यवंशी? बचपन से ही अरमान सम्राट ठाकुर को सिर्फ ठाकुर कहकर पुकारा करता था, और सम्राट अरमान को सूर्यवंशी कहकर पुकारा करता था। सिंघानिया सरनेम अरमान को आहान की फैमिली में जाने के बाद मिला था। फिलहाल अगले ही पल अरमान तुरंत उठ खड़ा हुआ और अपना महंगा सूट ठीक करते हुए उसने सम्राट की तरफ बेमन से देखा। अचानक उसकी नजरें तीखी हो गईं और वो सख्त आवाज में बोला, तुझे पता है तू अभी तक जिंदा क्यों था? तू अभी तक जिंदा सिर्फ इसलिए था क्योंकि तू मेरे रास्ते में अब तक नहीं आया था, और शायद तू भूल रहा है हम दोनों ने ही वादा किया था कि हम दोनों कभी भी एक दूसरे के रास्ते में कभी नहीं आएंगे, और तूने वो वादा बखूबी निभाया भी था। लेकिन तूने अरमान सिंघानिया के बेटे पर हाथ डालकर बिल्कुल भी ठीक नहीं किया ठाकुर, उसकी सजा तो तुझे जरूर मिलेगी। जैसे ही अरमान ने ये कहा, वैसे ही सम्राट ने अरमान की ओर घमंड से देखा और जोरों से ताली बजाकर चिल्लाने लगा, ओ सूर्यवंशी, तू तो यार कुछ ज्यादा ही रफ एंड टफ नहीं हो गया है? थोड़ा सा चिल क्यों नहीं करता है लाइफ में? और मैंने सुना है तेरी जिंदगी में प्यार आ गया, पता नहीं ये प्यार शब्द जिसकी जिंदगी में भी आता है उसे बर्बाद करके चला जाता है। फिलहाल मानना पड़ेगा बहुत कोशिश की तेरी प्यार को देखने की, लेकिन चाहकर भी मैं तेरी महबूबा को देख नहीं पाया, लेकिन तू उसे कब तक छुपा कर रखेगा? एक बात याद रखना सूर्यवंशी, एक ना एक दिन तो मैं उसका चेहरा देख कर ही रहूंगा, आखिर मैं भी तो देखूं अरमान सूर्यवंशी जैसे पत्थर दिल इंसान को किसकी मोहब्बत ने बदल कर रख दिया। जैसे ही सम्राट ने थोड़ा सा व्यंग में ये कहा, वैसे ही अरमान ने तुरंत अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद कर लिया था। इसका मतलब साफ था कि वो अपने अंदर भड़क रहे गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। अचानक अरमान के चेहरे पर एक कड़वी सी मुस्कुराहट उभर आई और वो सम्राट की आंखों में आंखें डालकर एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोल रहा था,
तू जानता है तू सपना अच्छा देख रहा है, लेकिन जिस दिन तूने अरमान सिंघानिया के अंश को अगवा करने की कोशिश की उसी दिन तूने अपने डेथ सर्टिफिकेट पर सिग्नेचर कर दिए थे। और रही बात मेरी मोहब्बत को देखने की, तो तेरा ये सपना सपना ही रह जाएगा। और मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, इसी सपने के साथ तू इस दुनिया से चला जाएगा। और शायद तू भूल गया, तुझे मैंने पहले ही समझाया था कि मेरे रास्ते में कभी मत आना, वरना नेक्स्ट टाइम अगर तू मुझे मिलेगा तो मैं तुझे मौत के घाट उतार दूंगा। फिलहाल मेरे पास अभी इतना वक्त नहीं है कि मैं तुझसे किसी भी तरह की कोई फालतू बात करूं, समझा? इतना बोलकर अरमान तुरंत उठ खड़ा हुआ और राजाओं की तरह तिरछा मुस्कुराकर फिर तुरंत ही वहां से बाहर निकलने लगता है। अरमान ने बिना मुड़े होंठ भींच लिए और आंखों में उमड़ता गुस्सा दबा लिया। वहीं सम्राट अभी तक अरमान की बातों में ही उलझा हुआ था और जल्दी ही उसे किसी अनहोनी की आशंका नजर आने लगी थी। साथ ही साथ सम्राट के मन में इस बात का ख्याल आया, कहीं रॉकी राजवीर को लेकर वहां ना आ जाए, क्योंकि अगर अरमान ने राजवीर को जिंदा देख लिया तो वो उसकी प्लानिंग समझ जाएगा और इतनी जल्दी सम्राट राजवीर को अरमान के सामने नहीं आने देना चाहता था। इसीलिए जल्दी ही वो गार्ड गार्ड बोलकर चिल्लाता हुआ तुरंत अपने कमरे से बाहर दौड़ा। और जैसे ही वो कमरे से बाहर निकला, वैसे ही सम्राट के मुंह के शब्द उसके मुंह में दबकर रह गए थे। उसने देखा कि उसके पूरे हॉल में, उसके पूरे डाक विला में चारों तरफ उसके आदमियों की लाश बिछी हुई थी। कहां तो वहां पर राजवीर के आने की भव्य तैयारियां चल रही थी और सम्राट बड़े पैमाने पर राजवीर का स्वागत करके उसे अपने डाक विला में लाना चाहता था, लेकिन यहां अरमान ने केवल कुछ ही मिनट में आकर उसके डाक विला को मौत का विला बना दिया था। चारों तरफ सिर्फ सम्राट के आदमियों की लाश ही दिखाई दे रही थी और अरमान ने बड़ी बेरहमी से सभी को मौत के घाट उतार दिया था। और ये सब इतने कम वक्त में हुआ जिस वक्त सम्राट अच्छी तरह से नहाने के लिए वॉशरूम घुसा था। केवल आज सम्राट पूरे 30 मिनट तक नहा रहा था, क्योंकि वो राजवीर के सामने खुद को बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट करना चाहता था, अच्छे से तैयार होकर उसके सामने जाना चाहता था। लेकिन यहां तो अरमान ने केवल इस 30 मिनट के अंदर ही अंदर सम्राट के डाक विला को मौत का विला बना दिया था। वहीं तब उसे अरमान मेन गेट से बाहर जाता हुआ दिखाई दिया और बाहर कदम रखने से पहले अरमान एक बार रुका और अचानक पीछे मुड़ा और उसने सीढ़ियों से ऊपर तौलिया में खड़े हुए सम्राट की ओर खड़वाहट से देखा। तभी अरमान ने उसकी ओर देखकर अपना सीधा हाथ हवा में लहराते हुए उठाया और अचानक मुट्ठी बंद करके खुला छोड़ दिया। अपने होंठ फुलाते हुए बोला, बूम।
सिर्फ इतना बोलकर अरमान जहरीली मुस्कुराहट के साथ अपने शानदार चोपर में जा बैठा था। अब सिचुएशन को भांपते हुए सम्राट के चेहरे से पसीना निकलना शुरू हो गया और बिना देरी किए उसने तेजी से तौलिया में ही घर से बाहर छलांग लगा दी थी। और जैसे ही वो घर से पूरी तरह से बाहर गिरा, ठीक उसी पल सम्राट का पूरा डाक विला ब्लास्ट होने शुरू हो गया था। वहीं रॉकी, जो राजवीर को लेकर ठीक उसी वक्त डाक विला में आया था जब उसने सम्राट को तौलिया में बाहर पड़े हुए देखा और डाक विला को ब्लास्ट होते हुए देखा, तब रॉकी के चेहरे से पसीना टप टप बहने लगा था। उसकी घबराहट उसके चेहरे पर साफ साफ झलक रही थी। वहीं राजवीर, जो कि उस वक्त व्हील चेयर पर बैठा हुआ था, उसकी आंखों में किसी तरह के कोई इमोशंस नहीं था और वो सम्राट के पास आया। सम्राट ने राजवीर को देखते ही अपनी नजरें झुका ली थी, लेकिन तभी राजवीर उसकी ओर देखकर अचानक जोरों से हंसने लगा था। राजवीर को ऐसे बेपरवाही से हंसते हुए देखकर रॉकी के तन बदन में आग लग गई थी। उसने गुस्से से मन में सोचा, पता नहीं बॉस को इस अपाहिज आदमी में क्या दिखता है। कहां तो लोग अपनी गर्लफ्रेंड या महबूबा के पीछे पागल होते हैं, लेकिन मेरा बॉस तो इस अधेड़ उम्र के अपाहिज आदमी के पीछे पागल है। ये आदमी यहां आकर मेरे बॉस का मजाक उड़ा रहा है और बॉस केवल उसे नजरें चुराकर उसके सामने खड़े हुए हैं। राजवीर को ऐसे हंसते हुए देखकर रॉकी का खून पूरी तरह से खौलने लगा था। फिलहाल राजवीर ने बड़े ही सर्द आवाज में तंज कसा, मैंने कहा था ना, वो तुझसे ज्यादा स्मार्ट है सम्राट। नाम रखने से कोई स्मार्ट नहीं हो जाता। तूने उसे कम आंकने की कोशिश की, तूने सबसे बड़ी बेवकूफी ये की तूने उसके बच्चे को अगवा करने की कोशिश की। तुझे अगर उसे कुछ करना ही था तो मुझसे पूछ लेता ना। जैसे ही राजवीर ने कोल्ड वॉइस में ये कहा, तो ये सुनकर सम्राट के तन बदन में पूरी तरह से आग लग गई थी और वो डार्क फेस लिए तुरंत ही राजवीर की व्हीलचेयर पर झुक गया और अगले ही पल राजवीर की आंखों में आंखें डालकर बेबाकी से बोला, आपको कैसे पता चला कि ये सब कुछ उसी ने किया है? तभी राजवीर सम्राट की आंखों में आंखें डालकर घमंड से बोला, क्योंकि वो मेरा चेला है, वो कब क्या कर सकता है ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुझे क्या लगता है, भले ही मैं हॉस्पिटल में मौजूद था तो क्या मुझे किसी तरह की कोई खबर नहीं होगी? जैसे कि राजवीर ने रहस्यमयी अंदाज में ये कहा, तो ये सुनकर वैसे ही सम्राट उसी पल शांत हो गया था और अचानक से सम्राट ने अपनी पीठ सीधी की और उठ खड़ा हुआ और अगले ही पल वो खुलकर जोरों से हंसने लगा। अब जैसे ही सम्राट बेपरवाही से हंसने लगा, उसे देखते ही राजवीर भी उसके साथ डरावनी सी हंसी हंसने लगा था। वहीं रॉकी अब कन्फ्यूजन से अपना सर खुजाने लगा था कि आखिरकार इन दोनों को हुआ क्या है और ऐसा क्या इन्होंने जोक पास किया है जो ये दोनों इतनी बुरी तरह से हंस रहे हैं। तभी हंसते हंसते अचानक राजवीर ने कठोर एक्सप्रेशंस के साथ सम्राट को देखा और फिर उसे समझाना शुरू किया। अरमान ने तुझे फाइनेंशियली तरीके से पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। उसने ना केवल तेरा डाक विला उड़ा दिया, बल्कि जितनी भी तेरी नाइजीरिया के अंदर प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस था वो सब कुछ
कुछ वो जब्त कर चुका है। अब मेरी बात ध्यान से सुन। जिस जिस देश में तूने जितनी भी प्रॉपर्टी खरीदी है, जितना भी तूने अब तक बैंक बैलेंस बनाया है, उन सबको बेचकर पैसा इकट्ठा कर। तब तक मैं तेरा ये डाक विला एक बार फिर से तैयार करवाता हूँ। और अभी कुछ दिनों के लिए ठंड रख। अरमान को इस गलतफहमी में जीने दे कि तेरी मौत हो चुकी है। और रही बात अरमान की, उसका इंतजाम मैं कर चुका हूँ। अब सिर्फ हमें तमाशा देखना है, सिर्फ तमाशा। मैंने उसका कुछ ऐसा इंतजाम किया है जिससे उसकी जान तो नहीं जाएगी, लेकिन उसकी जान से भी प्यारी चीज उससे छिन जाएगी। ये बोलते हुए राजवीर का चेहरा बड़ा ही खतरनाक लग रहा था। वहीं सम्राट के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कुराहट थी। आखिरकार उसे अपने गुरु के टैलेंट पर पूरी तरह से यकीन था कि उसका गुरु कितना बड़ा कमीना है और वो कब क्या कर सकता है, इसके बारे में उसे अच्छी तरह से अंदाजा था। फिलहाल सम्राट ने गहरी सांस ली और अपने तौलिए को लपेटते हुए रॉकी को देखकर आईब्रोज गाते हुए कहा, जाकर चॉपर रेडी करवाओ। उसकी बात सुनकर अगले ही पल रॉकी थोड़ा सा हकलाते हुए बोला, लेकिन बॉस सब कुछ तो तबाह हो चुका है। इतना ही नहीं, जहां पर आपके जितने भी प्राइवेट जेट और चॉपर थे वो सब भी ब्लास्ट हो गए हैं। रॉकी को जैसे ही ये नोटिफिकेशन मिली तो उसने वैसे ही सम्राट को बताया। सम्राट को कोई आश्चर्य नहीं हुआ और उसने अचानक राजवीर की ओर तिरछी नजर से देखा। तभी राजवीर ने तुरंत एक मैसेज किसी को भेजा और सम्राट को देखकर रोबदार आवाज में बोला, जाओ जाकर पहले कुछ पहन लो, चॉपर 5 मिनट में तुम्हारे पास आ जाएगा। और तुम्हें किस देश में कहाँ जाना है, किस जगह जाना है, वहाँ जाओ और थोड़े दिन तक पैसा वगैरह इकट्ठा करो। ये बोलते हुए राजवीर बड़ा ही खतरनाक लग रहा था। वहीं रॉकी अब तुरंत ही राजवीर की व्हीलचेयर को वहाँ छोड़कर वहाँ से सीधे सीधे सम्राट के पीछे पीछे जाने लगता है। अचानक रॉकी के मन में चलते हुए ये ख्याल भी उमड़ रहा था कि वो किसी अपाहिज आदमी को यूं जले हुए घर के सामने अकेला छोड़कर जा रहा है, तो ऐसे में उसकी मदद कौन करेगा। तभी उसने एक बार सहानुभूति की नजरों से पीछे की ओर देखा और जैसे ही उसने मुड़कर देखा तो वैसे ही रॉकी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी, क्योंकि रॉकी और सम्राट के वहां से आगे जाते ही राजवीर के आगे पीछे कम से कम 20 लोग एकदम काले सूट बूट पहने हुए वहां खड़े हुए थे। आपको क्या लगता है, क्या चल रहा था राजवीर के दिमाग में और आगे क्या होगा आस्था और अरमान की इस कहानी में?